ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 10 मई 2020 के लिए है। विषय: आदम और पतित आदमी। स्वर्णपथ, क्रंथियों। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। उत्तरदायी ध्यान, रोमियो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धाम रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धाम का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धार्मिक ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा कि मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहराए, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धार्मिक ठहराए जाएंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धार्मिक ठहराते हुए राज्य करे। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन सेनता। आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह ही श्वास से बने। वो समंदर का जाल ढेर के नियन इकट्ठा करता, वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही होगा। उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रींगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रींगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरुण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुले हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर उससे पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे जिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अबरानियों, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरुण जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जान पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। इफ़सियों, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रेरितों के काम। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस में निर्देश देने वाले लोग इस शानदार धारणा तक पहुंच चुके हैं कि ईश्वर ही मनुष्य का एकमात्र लेखक है। पिता माता देवता का नाम है जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इंगित करता है, जैसा कि प्रेरित ने इसे उन शब्दों में व्यक्त किया है जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्ध भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अनंत की कोई शुरुआत नहीं है, इस शब्द की शुरुआत ही एकमात्र के संकट के लिए की जाती है, यानी ब्रह्मांड सहती ईश्वर और मनुष्य की अनंत सत्यता और एकता, रचनात्मक सिद्धांत जीवन सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है जो अनंत मन में समाहत हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं और उत्तम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जो कुछ भी मनुष्य के पाप को दर्शाता है, या भगवान के विपरीत, या भगवान की अनुपस्थिति, आदम का सपना है, जो ना तो मन है और ना ही मनुष्य है, क्योंकि ये पिता की भीख नहीं है। यहोवा ने घोषणा की कि धरती शापित हुई थी, और इस आधार से इस सामग्री आदम को बनाया गया था। फिर भी मनुष्य के लिए भगवान ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया था। इससे ये अनुसारण करता है कि आदम आदर्श नहीं था जिसके लिए पृथ्वी धन्य थी। आदर्श व्यक्ति का अतीत समय में पता चला था और उसे यीशु मसीह के रूप में जाना जाता था। हमें ये याद रखना चाहिए कि सामान जैसे पूर्ण और अमर आदमी हमेशा के लिए अस्तित्व में है, और किसी भी जीवन, पदार्थ और बुद्धि के नश्वर भ्रम से परे और हमेशा मौजूद है। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक के पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है। और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, ना के पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। यहाँ तक कि क्रिश्चियन साइंस में आत्मा के व्यक्तिगत विचारों द्वारा प्रजाएं, लेकिन इन विचारों के दिव्य सिद्धांत की रचनात्मक शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मानसिक अभिव्यक्ति के माध्यम से मन के बाहुपक्षी रूपों के बारे में है, जो लोगों के वास्तविक के मन को नियंत्रित करते हैं। प्रतिबिंब को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत। परमेश्वर के बच्चों का गुणान किसी बात में प्रसार की शक्ति से नहीं होता है, ये आत्मा का प्रतिबिंब है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है, और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभावित्व प्रदान करता है। मनुष्य को भावतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भावतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। त्रुटि के भयानक दिन, कालापान और अराजकता के ऊपर सत्य की आवाज अभी भी कहती है, आदम तुम कहाँ हो, चेतना तुम कहाँ हो, क्या तुम इस विश्वास में निवास करते हो कि मन भावतिक है और ये बुराई मन है, या तुम्हारे जीवित विश्वास में कला है कि एक ईश्वर है और उसकी आज्ञा रख सकता है। जब तक सबक नहीं सीखा जाता है कि भगवान एकमात्र मन शासी आदमी है, तब तक नश्वर विश्वास डर जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत में था और मांग से छिप जाएगा कि तुम कहाँ हो। ये भयानक मांग कि आदम तुम कहाँ हो, सर, हृदय, पेट, रक्त, नसों आदि से प्रवेश द्वारा जुदा हुआ है। लो, यहाँ मैं हूँ, शरीर में खुशी और जीवन की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन केवल एक भ्रम ढूंढ रहा हूँ, झूठे दावों का सिमशरण, झूठी खुशी, दर्द, पाप, बीमारी और मृत्यु द्वारा। स्वर्थ और संवेदना नश्वर मन में शिक्षित होते हैं। कभी किसी के स्वयं के प्रति आवर्ती विचारों से, शरीर के बारे में बातचीत से, और उससे सदा सुख या दर्द की अपेक्षा से, ये शिक्षा आध्यात्मिक विकास की कीमत पर है। अगर हम नश्वर वेशभूषा में सोचते हैं तो उसे अपनी अमर प्रकृति को खो देना चाहिए। अगर हम शरीर को आनंद के लिए देखते हैं तो हमें दर्द होता है, जीवन के लिए हम मृत्यु को पाते हैं, सत्य के लिए हम त्रुटि पाते हैं, आत्मा के लिए हम इसके विपरीत पदार्थ को पाते हैं। अब इस क्रिया को उल्टा कर दें, सत्य और प्रेम में शरीर से आगे देखें, सभी खुशी, सिद्धभाव और अमृता का सिद्धांत, धीरज, अच्छे और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़ें, और आप अपने अनुभवों के अनुपात में उन्हें अपने अनुभव में लाएंगे। आध्यात्मिक रूप से बनाया गया ईश्वर का मनुष्य भावतिक और नश्वर नहीं है। सभी मानव कला के जानक आदम का सपना थे, गहरी नींद जिसमें उसकी उत्पत्ति हुई, उसका जीवन और बुद्धिमत्ता किस पदार्थ से आगे बढ़ी और गुजर गई। ये नास्तिक त्रुटि या तथाकथित सांप अभी भी सत्य के विपरीत पर जोड़ देता है, जो कह रहा है, तुम परमेश्वर के तुले हो जाओगे। इसका मतलब है, मैं सत्य के रूप में वास्तविक और शाश्वत के रूप में त्रुटि करूंगा। क्या दिव्य प्रेम के बच्चों को लुभाने के लिए सांप झूठ बोल रहा है? सांप केवल रूपक में प्रवेश करता है, अर्थात बुराई के रूप में। जानवरों के साम्राज्य से हमारा कोई संबंध नहीं है, जो वर्णित प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात बात करने वाला सांप, और उस बुराई को फिर से खुश करना चाहिए। जो भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वो खुद को वीर वधाभास करता है, और ना तो उसकी उत्पत्ति होती है और ना ही सत्य और अच्छाई में समर्थन। ये देखकर हमें बुराई के सभी दावों से लड़ने के लिए विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेकार और असत्य हैं। आदम त्रुटि का पर्याय भौतिक मन की धारणा के लिए खड़ा है। वो किसी हद तक आदमी पर अपना शासन शुरू करता है, लेकिन वो झूठ में भर जाता है और उसके दिन कम हो जाते हैं। इस विकास में सत्य के अमर आध्यात्मिक नियम को नश्वर, भौतिक अर्थ के विपरीत हमेशा के लिए प्रकट कर दिया जाता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है, होने का दिव्य सिद्धांत है। जब बीमार या पापी अपनी आवश्यकता को महसूस करने के लिए जागते हैं, तो वो दिव्य विज्ञान के प्रति ग्रहणशील होंगे, जो आत्मा की ओर और भौतिक अर्थ से दूर शरीर से विचार को हटाता है, और यहाँ तक के मन को भी चिंतन के शिखर तक बढ़ा देता है। पाप या बीमारी से कुछ चीज़ें बेहतर हैं। भगवान का सही विचार जीवन और प्रेम की सच्ची समझ देता है, जीत की कब्र को लूटता है, सभी पाप और भ्रम को दूर करता है के अनय मन हैं और मृत्यु डर को नष्ट कर देते हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।